Chaudanandana Vrajadanandana Chaudanandana Vrajadanandana Chaudanandana Vrajadanandana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jamuna Pijan Vallabha Giri Vardhani Jai Jashodhanandana Bhajajanarandana Shodhanandana Bhajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatira Vanatira Yamunatira Madhava Kunja Bihar Bhukti Channa Vallabha Giri Vardha Shodhanandana Vrajajanaran Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yayara Kavadhava Kunja Bihari Krishna 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तव श्लोके श्रीमद्भागवत क्रम के अनुसार नवे स्कंद के 15वें अध्याय का 23वां श्लोक का पाठ हम लोग देखेंगे। श्री प्रभुपाद महाराज के तात्पर्य के साथ आप सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। स एकदा तो मृग्यां विसृजन् विजने वने यदश्चया आश्रमपदं जमदग्नैः उपाविशत् शैकदा तु मृगिणां विचरन् विजने वने यदश्चयाश्रमपदम् जमदग्नैरुपाविशत् शैकदातुमगियम् विचरन् विजने वने यदश्चयाश्रमपदम् एक जेंट्स और एक लेडीज
लेडीज
सह वह कार्तिक विद्यार्जुन एकदा एक बार तो लेकिन मृगिया शिकार करते हुए विचरण घूमने लगे विजने इस प्रकार निर्जन वने वन में यदश्चया दैवस्य आश्रम पदम आश्रम में जमदग्नि मुनि के उपाविशत उपाविशत आया या गया शिमदेश भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा एक बार जब कार्तिक विद्यार्जुन ऐसे ही देववर्ष एकांत जंगल में घूमकर शिकार कर रहे तब अग्नि के निवास के निकट जा पहुंचे। तात्पर्य कार्तिक विद्यार्जुन को जमद अग्नि के आवास तक जाने का कोई कारण न था, किंतु अपनी अद्वितीय शक्ति से गर्वित होकर वह वहां गया और उसने परशुराम का अपमान किया। परशुराम द्वारा उसके मारे जाने की यही पूर्व पीठिका थी। अमज्ञान निमिनंद ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं जहि तस्मै श्री गुरुवे चितैतन्नमनोऽभीष्टं स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूपकदामजं ददाति शपदम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो नवश्नवंश श्रीरूपं साग्रजातं शहगण रघुनाथनवितं तं सति साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता शिवशाखन्वितम् मुखम करौति वाचामं पङ्गुमलङ्गयटगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमा जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सरवत्सपदाम्बुदु श्रीराधामदनु वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 नमः विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि हस्तात् देशता हरे कृष्ण। सैकदात्म विज्ञान चरण विजमने यदस्याश्रम बनम जमदग्नेर उपाविशत। तो सुखदेव गोस्वामी पर महाराज परीक्षित को भगवान परशुराम की चरित्र का उपक्रम बताते हुए इस श्लोक को कहते हैं। तो हम लोग नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं और इस पाठ के अंतर्गत सब कथा को आप जानते हैं, लेकिन आगे के श्लोक में प्रकट नहीं होने के कारण हम उनका पाठ कर लेते हैं कि गृहीतो लीलिया नाम समक्षम कृत किलबिष माहिष्मद्यम तम निरुद्धो मुक्त जैन कपीर यथा। तो ये कथा का उपक्रम इस प्रकार है, भगवान के उन परम पराक्रम को वो बताने जा रहे हैं, तो उसके उपक्रम से यहां पर एक महान योद्धा एक राजा का कथा को सबसे पहले वो रखते हैं। और इन कार्तिक विद्यार्जुन का विद्य को उनकी रीतता को दर्शाने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद एक घटना बता रहे हैं। उस घटना से आप सब लोग विदित है कि किस प्रकार वो अपनी पत्नियों के साथ स्नान करने के लिए नर्मदा में उतरे और नर्मदा के उन महा प्रवाह को उन्होंने अपनी भुजाओं से रोक लिया। ये चमत्कार दिखाना चाहते थे अपनी पत्नियों को, अपने विजय का प्रदर्शन वो कर रहे थे और वो कितना महान वीर था उनके विषय में भी आगे के श्लोक में वर्णन है। और वो सिद्धि प्राप्त किया था उन्होंने भगवान विष्णु के अंश दत्तात्रेय जी से, किसी प्रकार उनसे प्रतिक्रिया से श्री दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिए थे और उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने युद्ध में अपराजित रहने का वर प्राप्त कर लिया था और अनेक सिद्धियां उनके पास से प्राप्त कर ली। जैसे इसलिए वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और भारी से भी भारी हो सकता था और इस प्रकार वो संसार में विचरण करता था। तो ये एक बार नदी में स्नान करने के लिए उतरे और उन्होंने की जल की धारा को अपने बाहुबल से रोक लिया और उसी समय रावण दिग्विजय के लिए निकला हुआ था और उस नदी के तट पर अपने सैन्य बल के साथ वहीं पर उनका पड़ाव था ऊपर में। और प्रवाह जब उल्टा जाने लगा तो उनकी छावनी में पानी भर गया और किसने कार्य किया, किसने किया, मतलब कार्तिक विद्यार्जुन ने कार्य किया। तो जैसे हम लोग कल अमृतपुर से सुन रहे थे कि उनके खूब मास्तर्य था, क्योंकि ऐसे भी विजय करने के लिए निकला था तो उनको सहन नहीं कर पाया। मतलब देख लिया तो ऐसा कहते हुए वो गए उन सस्ता अर्जुन जहां स्नान कर रहा था वहां पर और उनकी स्त्रियों के सामने बकवास करने लगा, गाली देने लगा और इधर उधर की सुनाने लगा। तो कार्तिक विजय ने सस्ता उनको पकड़ करके मंदिर की तरफ बांध दिया, जाइए, और बांध करके वो माई स्मृति नगरी में ले गए और पीछे से उन विश्रवा का भी पिता रावण के दादा ने पुलस्त मुनि ने जाकर के उनको छुड़वाया, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये तो बच्चा है, आपके सामने क्या है, बच्चा है, ये बच्चा है, छोड़ो, इनका बचपना नहीं गया अभी तक, और करके खोल दिया। तो ऐसे वो कार्तिक विद्यार्जुन एवं विद कार्तिक को ऐसा कहते हैं, तो ऐसे पराक्रमी उन कार्तिक विजय ने परशुराम जी का अपराध किया। इस अपराध को दर्शाने के लिए यह घटना को सुखदेव गोस्वामी बात बता रहे एकदा करके, मतलब एक समय की बात है, ऐसा करते हुए कार्तिक विजय के उन परशुराम के प्रति जो अपराध है उन अपराध को बता रहे, जिसके कारण उनको देह त्याग करना पड़ा। 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय हीन होना पड़ा। यद्यपि सुखदेव बात कहते हैं कि उतना बड़ा अपराध क्षत्रियों का था नहीं, लेकिन का बहाना बन करके श्री परशुराम जी ने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय हीन कर दिया और रक्त के बड़े बड़े 5 कुंड निर्मित किए कुरुक्षेत्र में। लेकिन क्योंकि भगवान के कृत्य होने के कारण तो उन कुंडों में जाकर के आज भी स्नान करके लोग पवित्र होते हैं और अपने पाप ताप से निवृत्त होते हैं, क्योंकि भगवत कार्य इस प्रकार होता है, सबके हित के लिए ही होता है। तो इस अपराध को दर्शाने के लिए ये कह रहे हैं कि एक बार वो मृगिया करते हुए विचरण कर रहे हैं और विचरण करते हुए अत्यंत गहन वन में चले गए, निर्जने बने, विजने बने, अर्थ निर्जने बने, जहां जन सामान्य कोई नहीं था, मनुष्य नहीं था, ऐसे घोर वन में वो चले गए और वहां जाकर के उन भूखे प्यासे थे और भटकते हुए कहीं कहते हैं कि दस्या आश्रम पदम जमदग्नि रूपाविष्यत, उन महामुनि जमदग्नि के आश्रम में वो चले गए या आश्रम में गए। यहां लिखा है यदस्या, यदस्या का अर्थ होता है दैव के द्वारा निर्मित, दैव के द्वारा निर्मित ये घटना है, तो दैव के मारे ये भी वहां पर चले गए और वहां उनका अपराध हुआ। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वहां जाने का उनको कोई कारण नहीं था, उसका अर्थ बिना कारण ऐसे वो चले गए, कुछ भूख प्यास के कारण गए होंगे तो वहां पर वो चले गए और वहां परशुराम जी का अपराध हो गया। देखिए इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति के पास कुछ ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो वो ऐश्वर्य उनके दुर्भाग्य का कारण बनता है। इसलिए सबसे पहले जो व्यक्ति सिद्ध होना चाहते हैं या समसिद्धि चाहते हैं उनको चाहिए कि उन ऐश्वर्य के ऊपर ध्यान न दे। भाग्य से कुछ मिलता भी है ऐश्वर्य तो उन ऐश्वर्य के ऊपर उनको ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपनी साधना के ऊपर। एक कारण बताना जाने आगे कैसे अपराध होगा, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसके कारण उन परशुराम के द्वारा वो कैसे मारा जाता है उनकी पीठिका है। तो जीव भी माया के द्वारा कैसे ताड़ित होता है ये देखा कि यहां सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है लेकिन वो सिद्धि प्राप्त किया था, समसिद्धि नहीं। कोई लोग सोचेंगे कि इसमें भक्ति से क्या ताल्लुकात है, बहुत बड़ा ताल्लुकात रखती है, क्योंकि हम लोग भी समसिद्धि चाहते हैं। समसिद्धि का अर्थ भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम। और जब हम भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं तो उन मार्ग में उन भगवान की माया के द्वारा अनेक प्रकार से जीव को तराशा जाता है, अनेक प्रकार का विघ्न बाधा एक क्षति की तरह पराभूत नहीं हो जाता है भक्ति करने वाला व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दुर्दैव तो उपस्थित हो ही जाएगा। और दो चार दस पचास या दो चार लाख या एक आध करोड़ जन्म पीछे फेंक देगा साधक को, सामान्य घटना है। यदि वो रिक्त नहीं हो जाएगा इन राजाओं की तरह के, तो उनके बाद में वो मनुष्य जीवन मिला के नहीं मिला ये भी पता नहीं है, उनकी कृति के कारण, उनके कर्मों के कारण उनको क्या देह मिला उसकी कोई कथा नहीं है, पुराण में शायद हो सकती है, और मैं इतना पुराण का पाठ नहीं करने वाला व्यक्ति हूँ, भागवतम को थोड़ा पढ़ता हूँ गुरु कृपा से, आप लोग की कृपा से। तो ये राजा का क्या होता है ये तो नहीं, लेकिन भक्त का थोड़ा भी भक्ति किए हैं तो सुनिश्चित उनकी गति ठीक होती है, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो सिद्धि के लिए जैसे ये लोग प्रयत्न किए करते हैं, जैसे इन राजा ने प्रयत्न करके सिद्धि प्राप्त किया था, उस प्रकार हम भी संसिद्धि चाहते हैं, हम तो उनसे भी ऊपर की वस्तु चाहते हैं। सिद्धि तो भौतिक है और हम लोग परम सिद्धि चाहते हैं, समसिद्धि चाहते हैं। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अब प्रभुपाद जी ने भी परपट इसमें कोई ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन अगर बोलना ही है तो क्या बोले, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इसी के ऊपर थोड़ा चर्चा किया जाए। यद्यपि ये चर्चा नित्य प्रतिक्रम है और भागवतम के जो वक्ता होते हैं वो वक्ता लोग इसी प्रकार का कुछ पॉइंट लेकर के कुछ उपदेश करते रहते हैं। तो साधक व्यक्ति, मैं कह रहा था कि वो सिद्धि से पहले माया उनको बहुत परेशान करती है और अनेक परेशानियां उनके मार्ग में उनकी साधना को रोकने के लिए माया भेजती है। तो भजन करते हुए हम सब लोग को चाहिए कि ऐसे उन ऐश्वर्य इत्यादि जो जो आता है उनसे बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद महाराज की और वैष्णव की कृपा से हमारा थोड़ा बहुत मन भक्ति में लगा है और विधि भक्ति हम लोग ग्रहण कर चुके हैं। जब से हम लोग ने गुरु ग्रहण किया है या गुरु लेने का निश्चय, गुरु ग्रहण करने का निश्चय हम लोग ने कर है, संकल्प लिया है, तो उन संकल्प के साथ व्यक्ति को उन भजन प्रणाली को बराबर ध्यान से सीख लेना चाहिए जो भजन प्रणाली हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा आचरित है। और उन पूर्वाचार्यों ने उन बराबर उन रास्ते को साफ सुथरा करके रख दिया है, जिससे पीछे आने वाले साधक उस मार्ग पर चले तो उनको कांटा बाटा न लगे, इसलिए वो लोग उन मार्ग को साफ करते हुए गए हैं। इससे साफ सफाई का हमको जरूरत नहीं है, बस केवल उन लोग के द्वारा आचित उन मार्ग का अनुसरण बहुत आवश्यक है। और वो अनुसरण भक्ति मार्ग में ये ऐसा काम देता है, इस प्रकार का काम देता है कि व्यक्ति को यह अनुसरण ही सिद्ध कर देता है। ज्यादा कुछ साधना का आवश्यकता नहीं होता है, कड़ा साधना का जरूरत तो नहीं है इसमें। उन योगियों सोगियों की तरह ये भयानक साधना या कठिन तपस्या ये सब नहीं है। क्यों? क्योंकि साधु मार्गानुगमन, उन साधु लोग के अनुगामी हम लोग हैं, इससे सारे कष्टों से बचा लिए जाते हैं। लेकिन तिस पर भी पूर्व के साधुजन अपना अनुभव, कुछ शास्त्र का ज्ञान, उन दोनों को अप्लाई करते हुए अर्वाचीन या भविष्य में आने वाले जो साधक लोग हैं उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त किए हैं। तो देखिए भक्ति महाऐश्वर्य है, और भक्ति आते ही कुछ ऐश्वर्य पीछा करेगा, क्योंकि तो महाऐश्वर्य वस्तु है। जब हम विधि भक्ति को अपनाते हैं तो विधि भक्ति के साथ ये कुछ ऐश्वर्य का आना सहज है, सहज है। क्या क्या ऐश्वर्य है तो भक्ति के विषय में रूप गोस्वामी पर, इसलिए मैं कहा था ना उस दिन, सिरूप कृपाए पाए युगल चरण, रतन दास ठाकुर का भजन हम लोग देख रहे थे। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने उन भक्तों के अनुसरण के लिए जो भक्तामृत सिंधु को लिख दिया है, वो भक्त के लिए वो डाब की तरह है। जैसे घोड़े को लगा दिया जाता ना, स्टेप दिखता है, इधर उधर नजर ही नहीं जाता क्योंकि ऐसा लगा हुआ होता है। तो भक्तामृत सिंधु जो नियम वगैरह देती है वो ऐसा ही है, केवल इसी पथ को देखें और इसी पथ में आने वाले छोटे छोटे कंकड़ इत्यादि क्या है उनका वर्णन किया है, उसमें भी कंटक कंकड़ आएगा। ऐसा नहीं तो घोड़ा दौड़े ही जाए। लिखा गया है कि आंख मूंद कर भी कोई मार्ग पर चलेगा तो न स्कलेत न पते, ये तो पक्का बात है कि उनका स्कलन पतन नहीं होगा। लेकिन तीस पर भी देखा गया है कि स्कलन पतन तो नहीं है, लेकिन इस भक्ति मार्ग से इतर मार्ग में चले गए साधक लोग बहुत हैं, ऐसा देखा गया। और एक जीवन में पतन तो नहीं, पतन उनको बोल जाता तो जन्म जन्म पर्यंत उनको देखने को नहीं मिलेगा, उनको अधपात बोलते हैं। पर स्लिप तो होते हैं, स्लिप का तो वो गिरते गिरते बचा, हा 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 करते हुए संभल गया। स्कलन तो होता देखा गया है, न पते लेकिन स्कलन देखा गया है। स्कलन के निवारण के लिए भक्तामृत सिंधु है, और भक्तामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर श्लोक भक्ति के लिए लिखते हैं। विधि भक्ति कैसी है? क्लेशग्नि सुपदा। हम लोग विधि भक्ति कर रहे हैं तो स्वाभाविक क्लेशों का नाश होगा ही। जीवन में क्लेश जो आने वाले होते हैं उनको वो छाड़ खाड़ करके रख देती है, उनको काट करके रख देती है, व्यक्ति कंफर्टेबल होता है। ये भगवान की सुविधा है, जो उनका आश्रय लेने वाला व्यक्ति होते हैं उनको इस संसार में कष्ट दुख कम मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आश्चर्य नहीं है, ये तो सामान्य विदित घटना है। बड़े बड़े कष्टों को भी भक्त लोग लांग जाते हैं भगवत कृपा से, भक्ति की कृपा से, क्योंकि वो क्लेशग्नि है। लेकिन साथ में सुबदा सर्व मंगल उत्थित होता है। सर्व मंगल में रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में लिखते हैं कि वो मंगलमय क्या है, सब लोग उनका सत्कार करते हैं। चूंकि इतना बड़ा वस्तु उनके हाथ में आ गया है कि वो अत्यंत सम्मानित आदरणीय हो जाता है। भगवान की भक्ति इसलिए समस्त जगत आदर करता है उन व्यक्ति के प्रति, और वो आदर में हम लोग बह जाते हैं। देखिए विधि भक्ति श्रवणम कीर्तन स्मरण, भक्ति उन्नत ठाकुर अपने भजन रहस्य में इस बात को लिखे है। भागवतम का श्रवण या भागवतम का पठन कीर्तन, ये कंध में हम लोग लगे हैं। कोई वक्ता है, कोई लोग सोता है, श्रवण करते हैं, पर लगे हैं विधि भक्ति में। ये हमारे लिए विधि भक्ति है। चाहे वक्ता भी हो तो कोई सिद्ध तो है नहीं सुखदेव गोस्वामी की तरह, वो यही कार्य कर रहे हैं ना कि वो अपनी साधना कर रहे हैं। जब वो पाठ दूसरे को भी पढ़ाता है तो दूसरे को कम और अपने को ज्यादा पढ़ाता है, दूसरे को बहुत कम पढ़ा करके अपने को ज्यादा पढ़ाता है। इसको कहते हैं बढ़िया साधक। और दूसरे को पढ़ाने के फेर में उस चक्कर में कुछ अहंता ममता इत्यादि उत्पन्न होता है, क्योंकि हृदय दुर्बल खत्म नहीं हुआ है। हमारी हृदय की जो दुर्बलता है वो जो की त्यों पड़ी हुई है, भक्ति के कारण कुछ शिथिलता आया है, दो राय नहीं है, कुछ शिथिल हुआ है हमारा हृदय में जो दुर्बलता है, उनकी गांठ ढीला पड़ी है, लेकिन वो हृदय दौर्बल्य उत्थित हो होकर के हमारे भजन में बाधा देता है, हमारी साधना में विघ्न डालता है। हमारी पाप प्रवृत्ति उसमें विघ्नमय नहीं है, क्योंकि पाप तो भगवान का नाम लेते ही व्यक्ति का पाप टल जाता है, लेकिन जो विघ्न बाधा भजन में आती है, हमारे आचार्यों का कहना यह है कि वो उन हृदय दुर्बलता के कारण कुछ कार्य प्रारंभ करते। वो हृदय दुर्बलता चार प्रकार की कही गई है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा। कहते तुच्छा शक्ति कुटिनाति माश्चर्य स्वप्रतिष्ठता हृदय दौर्बल्यम बुद्धि शाश्वत गेयजम किल चतुर्विध। बुद्धिमान व्यक्ति उनको चार प्रकार का गिनाते हैं, हृदय दौर्बल्य हृदय की जो दुर्बलता है, तुच्छा शक्ति, तुच्छ माने जो भक्ति में बिल्कुल जरूरी नहीं है, उनको तुच्छ कहा जाता है। और जो भक्ति करता है उनको क्या आवश्यकता है उसको बोलते तुच्छ, ये इनके लिए तुच्छ है, ऐसी तुच्छा शक्ति। वो तुच्छा शक्ति भी चार प्रकार, वो उनको जाने दीजिए, उस विषय में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये हृदय दौर्बल्य जो उत्पन्न होता है उन हृदय की दुर्बलता को देखना चाहिए, उनके लिए ये पूरा प्रवचन जरूरी है, लेकिन आज की क्लास में तो हम उनको ले नहीं पाएंगे। लेकिन तुच्छा शक्ति का अर्थ व्यर्थ की आसक्ति, उसका साधक को चाहिए कि अपना जीवन यापन चल जाए उसी से सुखपूर्वक भजन करना चाहिए। बस हाँ, बहुत सुंदर बात भक्ति विनोद ठाकुर उनको भजन रहस्य में बताते। आइए हम लोग थोड़ा डिटेल जाते हैं तो मजा आएगा श्रवण करने का, क्योंकि आगे कुछ बोलने के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा मुझे बिठाया ही गया है तो कुछ ना कुछ तो कहीं से निकालना होगा। हैं, तो मैं देख रहा है तो क्या बोले, तो आप सब लोग साधक है, मैं भी साधक हूँ, इसलिए हमारे हमारा जहाँ उत्कर्ष होता है हम जिस मार्ग से बढ़ सकते हैं ऐसी कुछ बातों का पाठ सुनिश्चित रूप से करना चाहिए, है कि नहीं। तो तुच्छा शक्ति कहते हैं जो भक्ति में बिल्कुल जरूरत नहीं ऐसी चीज की आसक्ति। जैसे भक्ति में जरूरी है कि व्यक्ति का खान पान चलना सबसे जरूरी, कि प्राण नहीं रहेगा लेकिन प्राणवृत्तिया परिष्ट। हा, साधक को कैसे होना चाहिए, प्राण वृत्ति का पोषण हो जाए इससे संतुष्ट रहना चाहिए, अनर्गल आसक्ति उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती कुछ लेने के लिए बता रहे हैं विषयों को, तो उनको वहां हानिकारक समझते हुए नहीं लेना चाहिए। बुद्धिमानी उसी में है। चूंकि देखिए ऐश्वर्य आएगा, जैसे कोई बोलने वाला वक्ता है ऐश्वर्य आएगा, कोई अच्छा साधक है, अच्छी साधना करता है, तो उनको भी लोग प्रणाम करने लगेंगे। लेकिन उन साधक को, उन वक्ता को या उन श्रोता को, अच्छे श्रवणकारी व्यक्ति का भी लोग सराहना करके भक्ति कर रहे, वो कर रहे श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी विधि भक्ति, और विधि भक्ति में शुभदा अवश्यम आएगा है। शुभ, सभी वस्तु शुभ आएगी, शुभ में एक सम्मान शुभ माना जाता है, शुभ वस्तु है, आदर स्वाभाविक है, आदर का आना उनको कोई रोक नहीं पाएगा, उनको नहीं भी चाहिए ना तो वो आदर आएगा, नहीं भी चाहिए फिर भी वो आदर आएगा। तो जब वो आदर आता है तो सम्मान स्वरूप लोग सोचते कि क्या सम्मान करे इसका। और सबसे बड़ा कठिनाई वक्ताओं का है, श्रवण वाले को उतना ज्यादा महसूस नहीं करना पड़ता है और इतना प्रशंसा भी उनको नहीं मिलता है जितना आदर वक्ता को मिलता है। तो वक्ता को बहुत समझ सोच करके अपना नित्य दैनोदिन क्रिया को करना चाहिए। केयरफुल वक्त, मैं मेरे विषय में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा वक्ता हूं, और छोटा मोटा हूं, तो आदर का आना स्वाभाविक है, लेकिन वो आदर को कितना लेना चाहिए और कितने आदर को छोड़ देना चाहिए, ये विवेक हमको भजन रहस्य से जितना सुंदर मिलता है उतना मैंने दूसरी जगह नहीं देखा है। क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद, आप जानते हैं उस महापुरुष ने क्या कहा, इतने सारे ग्रंथ और इतने अद्भुत ग्रंथ लिख दिया कि सारे अर्वाचीन जो भी साधक आएगा तो उनके सब का कंटक कंकर दूर करने वाले एक महान व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने कहा है सबका रचना करके कि जगत सुनता ही नहीं है, बदमाश है, मुझे भजन करना चाहिए। देखिए हमारे आचार्य, देखिए इतने ग्रंथों को, अब आप सोचिए कि उस समय उनको क्या आदर सत्कार नहीं मिल रहा होगा, और उनके पास दूसरी भौतिक योग्यता भी थी। देखिए साधु लोग के जीवन का अनुसरण इसीलिए हम लोग देखते हैं, भागवत से भी, भागवत भक्ति की जीवनी से जो साधक को सीखना मिलता है वो कदाचित ज्यादा है श्रीमद् भागवतम से। क्योंकि भागवतम श्रवण कीर्तन में अनर्थ सुनिश्चित आता है, लेकिन भक्तों की जीवनी का उनमें कोई अनर्थ है ही नहीं, वो उल्टा अनर्थों का प्रकाश करता जाता है। जैसे कुंडल कृष्ण प्रभु एक दिन बता रहे थे कि अपने से जो ऊपर कोई साधक है तो उनका आदर सत्कार करके उनका अनुसरण करना चाहिए। बहुत ठीक बात है, बहुत सुंदर, इसी से हमारा साधना बहुत सुंदर चलेगा। अन्यथा हमारी साधना ठीक से नहीं चल रही है तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को देखे कि मेरा हृदय दुर्बल किस प्रकार का है, तुच्छा शक्ति है। तुच्छा शक्ति का अर्थ क्या है, तो तुच्छा शक्ति का अर्थ है छोटी छोटी बातों में आ सकती, जैसे धन भगवान के द्वारा या भक्ति के द्वारा उतना भेज दिया जाता है, उनकी व्यवस्था कर दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति अपने सम्मान के कारण बोले मैं इसको प्राप्त करने के लिए दूसरे के पास हाथ लंबा क्यों करूं, मुझे इतना सक्षम होना चाहिए कि मैं अपने से अपना व्यवहार चला लूं। ये कहते हैं तुच्छा शक्ति, इसी को कहते हैं। नोट कीजिए इसको, बहुत सीखने लायक बातें हैं। इसी को तुच्छा शक्ति कहते हैं। तुच्छा शक्ति क्या है? जब हमारा सर्वोत्तम जीवन चल रहा है, ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है और हम लोग ऐश्वर्य बढ़ाते जा रहे हैं, वाय क्यों होता है ऐसा? हृदय दुर्बल्य अनर्थ, इसी को अनर्थ बोलते हैं। भक्ति में जिनका कोई अर्थ नहीं है, इसको जादू टोना समझना चाहिए। जब भी ऐश्वर्य बढ़ता है ना, हमारा किसी से कोई द्वेष और कोई ईर्ष्या नहीं है, भगवान की कृपा से ये ईर्ष्या थोड़ा बहुत तो डाउन हो गया है, थोड़ा बहुत तो शिथिल हो गया है। हमें चौकस ये फील होता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ क्षेत्र में भजन कीर्तन में आगे बढ़ते हैं तो मैं हमें खुश रहता है हमारा हृदय, दूसरे से उत्कर्ष से कि अरे मेरे पीछे आने वाला वक्ता मेरे से बड़ा व्यक्ति वक्ता हो गया, उनका आदर लोग कर रहे हैं, हमारा अनादर हो रहा है, इसी से। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसी से मेरा आदर बढ़ेगा 100%। आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद नहीं, अरे 50,000 साल बाद भी उत्कर्ष बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। क्यों ईर्ष्या द्वेष किसी से रखे और क्यों नहीं सच्ची बात को लोगों के सामने रखे? तुच्छा शक्ति ये है। जीवन में जो कुछ भी मिले उनको भगवत कृपा समझना चाहिए, और किसी से भी द्वारा मिला हुआ ये नहीं समझना चाहिए कि तुच्छ डोनेशन के ऊपर मेरा जीवन जा रहा है। युक्त वैराग्य उनको बोलते हैं। युक्त वैराग्य के नाम पर हमारे पास बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। पक्षामृत सिंधु युक्त वैराग्य सिखाते हैं गृहस्थ को, ब्रह्मचारियों को। हमारे पास जितना भी बुद्धि भगवान के दिया है, जो ज्ञान दिया, जो याद शक्ति दिया है, उसी में व्यक्ति को संतुष्ट रहेगा तब वो भजन साधन कर पाएगा, नहीं तो उनका भजन नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? इसका ये भी नहीं है अपना नित्य पठन पाठन को लात मार दिया जाए, ना आवश्यक है। ये एक अपनी जगह पर है, लेकिन ज्यादा ज्ञान वर्जन भी बताया गया है शास्त्र में, याद रहे। अनेक प्रकार का पोथी पाठ करना पक्षामृत सिंधु मना करते हैं। इसी से केवल कुछ सस्ती लोकप्रियता कमा लेंगे, और लोकप्रियता आप जानते हैं ना, बड़े बड़े लोगों को डाउन कर दिया, वो लोकप्रियता नहीं है। इससे खास करके जो वक्ता साधक है उनको बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। तुच्छा शक्ति को देख लेना चाहिए, कहने से दूसरे के पास दोहराने से कुछ काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं आचरण में आना चाहिए जीवन में। यह नहीं है बोल दिया दस आदमी को हम अच्छे हैं, फाइन, ना, उसको आचरण में लो। बोल देने से क्या होगा, जान लेने से क्या होगा? कुछ नहीं, वहीं का वहीं उल्टा पीछे नीचे जाएगा। जान करके भी भगवान सोचेगा ये व्यक्ति जानता है फिर भी बदमाशी करता है, और वो सिद्धि चाहता है, मुझे धोखा देना चाहता है, तथापि भी भगवान धोखा करके नहीं देते हैं भक्ति मार्ग में कोई भी चीज। लेकिन देखिए युक्त वैराग्य को बताते हैं, कहते कि अनासक्त विषयान यथा अहम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्यम उच्चते हैं। बहुत सुंदर बात है, जब तक ये युक्त वैराग्य हम प्राप्त नहीं करेंगे
तब तक हम रूपानुग नहीं है। रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा ही हम लोग को उंगली पकड़ करके सिखाएगी, और जो लोग भावुक होकर के बोल रहे हैं कि नाना हमें वो देखने की जरूरत नहीं है, बस सब सब कुछ ठीक हो रहा है, वो भी बदमाशी है, वो भी कुछ प्राप्त नहीं करेगा। विषय वस्तु को समझना चाहिए। अच्छा, ये युक्त वैराग्य के अर्थ में लिखते हैं कि जो उन विषय है कृष्ण से इतर विषय, उसमें वैराग्य। अब भाई ये कि हमारा जीवन यापन हो रहा है तो क्या आवश्यकता है किसी चीज का? दैव से मिलता है, मान लीजिए सद्भाग्य से मिल रहा है, कि मेरा कुछ भाग्य है और भाग्य के बल पर मिलता है, तथापि भी उनको सहन करना इस संसार में और ये कलयुग में बहुत मुश्किल है। और युक्त वैराग्य के अंतर्गत छुप करके अगर हमारा कोई प्लान है तब तो हम बच ही नहीं पाएंगे। तुच्छा शक्ति, इसको बराबर जीवन में समझ लेना चाहिए। बातें करने से कुछ नहीं होगा, 100% बातें बहुत बोलने वाले हम लोग से मायावादी बहुत सुंदर बोलते हैं और बातें कथा ओ हो आप लोग उठने का मन नहीं होगा, लेकिन एक भी अनर्थ कटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और भागवतम के पाठ को जानते हुए भी हमारा आचरण हम सुधार नहीं पाएंगे, भागवतम में सारा पाठ है। जैसे कल कुंभदास को बता रहे थे कि ये भागवत किसके लिए, निर्मस्ताराम सताम। तो हम लोग को क्या होना चाहिए? सबसे पहले निर्मस्तर होना चाहिए अगर हमें भागवत चाहिए। कि मैं केवल ज्ञान ही देता रहूं दूसरों को, युक्त वैराग्य का ज्ञान ही दूसरों को देता रहूं और अपने जीवन में उनका आचरण न करूं युक्त वैराग्य का, और मैं बोलता रहूं मैं थर्ड क्लास हूं, मैं थर्ड क्लास, तो थर्ड क्लास ही बने रहेंगे। साहब गुड़ाकेश हो या उनका बाप हो, वो थर्ड क्लास बना रहेगा। सोचने से बोलने से क्या हो जाएगा? आचरण से होगा तो कुछ भी होगा ही। इसी को कहते साधु मार्गानुगमनम, इसको कहते साधु मार्ग के ऊपर चलो। चलने का बात बोला गया है, साधु मार्ग को देखने का नहीं, दिखाई दे रहा है साधु मार्ग, चलना नहीं है। और अपने को दुर्भाग्यशाली बताना है, ये उपाय नहीं है। जब दीक्षा शिक्षा लिया तो उपाय करना चाहिए। और उपाय में सबसे ज्यादा उपाय वर्जन का बताया गया है, पक्षामृत सिंधु उठाइए। वर्जन जितना बताया गया है भक्त के लिए है, उतना नियम नहीं बताया गया। क्यों? भविष्यत आज कलयुग में ये सब लिखा गया है, पक्षामृत सिंधु वो कलयुगी जीव के लिए लिखा गया है। किस लिए? अगर सतयुग में लिखा गया होता था एक भी नियम कानून रूप को सही बात नहीं लिखते थे, नियम नहीं लिखते थे। ये पालन करना, यह करना, इसका वर्जन, सॉरी वर्जन नहीं लिखते थे, नियम ही लिखते थे सारा, वर्जन नहीं लिखते थे। क्यों वर्जन बताया गया है? इतना वर्जन क्यों है? कड़ाई से आचरण के लिए है, क्योंकि कलयुग और कलयुग भक्ति छोटी बात नहीं है। यदि भी कलयुग बहुत भक्ति के लिए अनुकूल है, लेकिन अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूलता भी उससे ज्यादा है। इसने हमारे आचार्य इस प्रकार नियम बनाए हमारे लिए, फॉलोअप करना हमारा काम है। तो कहते हैं के निरंतर संबंध रख करके सेवा अनुकूल विषय को ग्रहण करने करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण संबंध है सदैव, अनुकूल क्या है उनको, अनुकूल भाव को आचरण में लाना चाहिए, बात में नहीं, जो बात करते बकवास है। बात क्या है, बात से क्या हो जाएगा, मैं करोड़पति हूं मैं करोड़पति हो जाऊंगा आगे तुम कह जाएगा वो हो जाएगा, आपका भी चलो ये कार्य करो आप भी करोड़पति हो गए, और दोनों बैठे हैं करोड़ों कमाने वाले सिखाने वाले और करोड़ों कमाने के लिए जो बैठे हैं वो भी, दोनों ऐसे ही लटके हुए हैं, करोड़ों मिलता मिलता जाइए। ये शिक्षाओं को आचरण के लिए पक्षामृत सिंधु में रखा गया है, इसलिए श्री रूप कृपाय पाय युगल चरण, श्री रूप कृपाय लिख दिया नतुन दास ठाकुर ने अपने भजन में विधान किया है। अच्छा, इसके लिए कहते हैं, कहते वृत्तिया स्वभाव कृतिया वर्तमान स्वकर्म कृत हित्वा स्वभाव जम कर्म समय निर्गुणताम याद। देखिए हमारा एक स्वभाव है सुनिश्चित, व्यक्ति अपना अपना स्वभाव प्रकृति के अंतर्गत लेकर के आए हैं, लेकिन वो स्वभाव कैसे होना चाहिए उनका वर्णन बता रहे हैं। स्वभाव है जैसे खाना पीना ओढ़ना पहनना, ये जरूरी है जीव के लिए, ये स्वाभाविक है, पर भगवान की भक्ति करने के कारण अगर वो मिल जाता है तो कौन प्रयास करेगा इनके लिए, तभी तो तक प्रयास है ना। स्वभाव कृतिया कहते अपने स्वभाव से भी वैसा जैसे भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित इसलिए किया है, उसी प्रकार भक्तों के लिए भी ये व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, वो अपने उन स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर के, अगर कोई व्यक्ति वक्ता होने के लिए अपने कारोबार को छोड़ चुका है तो उनको छोड़ने की भांति रहना चाहिए, छोड़ा हुआ है बस, बिल्कुल छोड़ा है भगवान के लिए भक्ति के लिए छोड़ दिया है, अभी वो बिजनेस को स्थान देना ही नहीं है जीवन में, कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी लोलुपता हमारे जैसे दुर्बलता उनको माना जाएगा। हम पंडित जैसी बातें नहीं कर सकते और पंडितों में वो बुद्धिमान माना नहीं जाएगा, अविद्वान लोग ख्याति प्राप्त कर लेगा कुछ अभिज्ञ लोगों से, लेकिन विद्वान लोग में उनकी कोई ख्याति नहीं होगी, कोई गिनती में ही नहीं विद्वान लोगों में। अब देखिए वो कहते हैं क्या, बोले स्वभाव कृत्या वृत्तिया स्वाभाविक वृत्ति, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हो गए हैं और ऐसा सोच लिया एक बार कि मेरी स्वाभाविक वृत्ति भक्ति करना है, ये मैं जान गया हूं, अपनी जीविका को छोड़ दे, कोई तकलीफ नहीं, आगे गारंटी लेंगे भगवान, भक्ति सब लोग की गारंटी है, कुछ रुकेगा नहीं। हाँ, लेकिन हमको गाड़ी और हमको बंगला चाहिए उसकी बात नहीं कही गई है, युक्त वैराग्य इसको बोला जाता है। किसको युक्त वैराग्य कहते हैं, बात में नहीं आचरण में चाहिए युक्त वैराग्य, भक्ति की शिक्षा है ये, थोड़ा बहुत कमाना नहीं है, सर्वोपरि वस्तु को कमाना, जीवन में परमार्थ अगर कमाना है, तो चाहिए ही चाहिए कि रूप गोस्वामी पाद के डाब को रखे दोनों साइड चढ़ा दे और बिल्कुल स्पष्ट अपने मार्ग की ओर ध्यान दे, साधक मुझे क्या प्राप्त करना है, अवांतर चित जो भी हृदय में उठती है उन वृत्ति को दबाने के लिए कवच दिया है और वो कवच हरिनाम है, हम क्यों ग्रहण नहीं करते हैं, वो कवच हमारा साधना है, उसमें शिथिल रहते हुए हम बोले जाए तो बोलने से क्या हो जाएगा, मैं शिथिल हूं दिखाई पड़ रहा है शिथिल, कौन बड़ी बात है, शिथिल है वो, शिथिलता को त्यागना ये हमारा कर्तव्य है। दूसरे में अगर जाया जाए तो कुटी नाती आता है, तुच्छा शक्ति के बाद कुटी नाती कहा जाता है कपटपूर्ण व्यवहार। एक भक्त के पास से अपेक्षा होती है कि उनका हृदय इतना सरल होना चाहिए, इतना सरल कि एक बच्चे तक के पास भी वो कपटता नहीं करता है, एक बच्चे के पास भी कपट व्यवहार नहीं करेगा। कपट व्यवहार के साथ हम भक्ति की आशा नहीं कर सकते। हमारे हृदय में एक बात हो, हमारी वाणी में एक दूसरा बात हो और सोचना कुछ तीसरा है, पर फिर प्लान चलने लगा क्या? अगर इस प्रकार बोलूंगा लोग ऐसा समझेंगे वैराग्यवान, और ये करने से ये आएगा। वाह वाह, क्या वैराग्य है, सुंदर है। हम कुछ भी करें, श्री भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे। जितना कपट व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे वो कपट हमारे साथ होगा, और वो उससे 10 गुना दुख हमारे पर आएगा। इसलिए व्यक्ति को अपने लिए वो कपटपूर्ण मार्ग का त्याग कर देना चाहिए। जैसा है वैसा दिखाई देना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में अगर हम लोग साधु हुए तो साधु का देश भी आवश्यक है। क्या है? अगर मैं साधु तो मेरे पास धोती कुर्ता, मेरे पास तिलक, प्रभुपाद जी का साधु है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि हम लोग पैंट पहनना चालू करें। क्यों भाई, क्या जरूरत है? हाँ, अगर दुबई में आपको प्रचार करने के लिए जाना पड़ेगा तो आवश्यक है, क्योंकि वहां धोती कुर्ता तिलक वाले को जाइए, कीजिए प्रताप, पैंट पहन करके कीजिए, खूब शर्ट पहन करके कीजिए। लेकिन हम भक्त हैं तो कम से कम भक्त समूह में हमें भक्त जैसा रहना चाहिए। ये ब्रिटिश की गैंग पैंट वहां पर पहन करके नहीं जाना चाहिए, सामान्य आचार है। अभी हम लोग भक्ति सीखने जा रहे हैं और भक्ति के बड़े बड़े वक्ता भी है, लेकिन आचरण में 0 है। क्या क्या है? हमारे पास आचरण है और कुटी नाती है, गारंटी। मैं प्रश्न रखूंगा कि ये कुटी नाती है, किसी को भी प्रश्न करना है कर सकते हैं, मैं सिद्ध करूंगा शास्त्र से बातें, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सारी बातों को। भक्ति सीखना है ना भाई, ऐसा नहीं है कि प्रवचन बहुत अच्छा लगा, गाली देना है तो दीजिए, नो प्रॉब्लम, मेरा कोई हानि नहीं होगा गाली से। बाहर जाकर के निंदा करना है कीजिए, हमारा कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर व्यासपीठ पर बैठ करके मैं आपको जो देना चाहिए वो नहीं दूंगा तो मेरा सबसे बड़ा हानि है, यही मेरा हानि मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी साधक हूं आपकी तरह, सामने भगवान है। कुटी नाती, हमारी कुछ प्राइवेट योजना भक्ति में मिक्स होती है कुटी नाती। भगवान बोलते हैं तुमको सब कुछ दिया है, क्या कमी रखा है? भक्ति बोलती है सब कुछ दे दिया है, अब क्यों तुच्छा शक्ति में है? तो फिर हृदय दुर्बल उठेगा ना, वो हृदय दुर्बल हमारे भजन को शिथिल करेगा कि नहीं करेगा? कौन दूर करेगा? जीव को अपने से दूर करना होता है। जीव को चाहिए ऐसे साधु की संगति में बैठ, तुच्छ संगति को चुटके में हटा दे, अपने को हटाना चाहिए। कौन करेगा हमारे लिए? जो हमसे निम्न होते हैं उनकी संगति केवल उनको कुछ ऊपर उठाने तक के लिए होनी चाहिए, उनके साथ सब कुछ नहीं व्यवहार कर लेना चाहिए। कैसे? और बहुत सारा ज्यादा बातें हैं तो उसके अनुसार मात्सर्य फिर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। जब हमारे हृदय में कुछ ना कुछ भोग की वासना है, मात्सर्य कहां उत्पन्न होता है मालूम है? जहां भोग वासना हृदय में रहती है, बोलने से नहीं जाएगी भोग वासना, उनको हटाना होगा। हमारा मन हमारा गुरु है, हमारी स्त्रियां हमारी गुरु है, कैसे काम चलेगा? कैसे भक्ति होगा? वो खूब अद्भुत होगी और अपने पुरुष को भी गिराएगी 100%। मैं तो स्ट्रेट बोलने वाला आदमी हूं, पहले से मैंने कहा बोलने वाला आदमी हूं स्ट्रेट, लेकिन भगवान की कृपा से भक्ति विषय पर बोल रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सद्भाग्य है। और गिरधारी ने आज से दिया देख करके अभी तक रखा है, ये मेरे लिए सद्भाग्य है। पर बहुत अच्छा शिक्षा, अगर भजन रस पढ़ेंगे, हम आगे बात नहीं करते हूं। मात्सर्य का तो दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाना, और ये बहुत बड़ा हृदय दुर्बल है। ठीक साधना के समय अगर किसी का श्रवण में प्रीति है, श्रवण के टाइम आकर के सुला देगा। किसी का कीर्तन में प्रीति है तो कीर्तन से सम्मान की भावना उठेगी हृदय में। हृदय दुर्बल जाना चाहिए, हृदय दुर्बलता हटना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर उनका उपाय स्पष्ट रूप में बताए हैं। आप सब लोग विज्ञ हैं, सारे ग्रंथ पाठ किए हुए हैं, लेकिन दोबारा पाठ का आवश्यकता, इनको दोबारा तिबारा चार बारा पांच बार अपने लिए व्यक्ति को करते रहना चाहिए, जब तक कि हमारे हृदय में ये तुच्छा शक्ति कोटि नाती मात्सर्य स्वप्रतिष्ठाता अपनी प्रतिष्ठा की भावना जब तक निर्मूल न हो, ये चार रूप में हृदय दौर्बल, तब तक व्यक्ति को बारंबार विचार करना चाहिए इसके ऊपर और बारंबार आचरण करना चाहिए। आचरण करके स्लिप होता है पैर, साधु लोग बचाने के लिए आपके पास हो, आपके घर में नहीं जाएंगे मंगल आरती के लिए। उठो मंगल आरती या ठीक से जप करो, आपके घर में जप कराने साधु जाएगा है? अगर साधुओं के बीच में रखते हैं साधु केयरफुल करेगा है? और एक साधु अपने पास रखिए आप है? जिनको हम अपना दिल का बात, गुप्त से गुप्त बात, गुप्त से गुप्त विचार उनको बिल्कुल खोल करके कह दे, होना ही चाहिए, बहुत आवश्यक। भक्ति माने सीधा फाइट माया के सामने। सीधा फाइटिंग, हरे कृष्ण। समय ज्यादा ले लिया, फिर भी अगर कोई किसी के पास कोई जिज्ञासा है या मैं जो बोला उसमें कुछ त्रुटि विच्युति लगता है तो आप लोग रख सकते हैं। जी
आगे बढ़ने के लिए कितने क्या क्या आपको
कहते हैं कि भक्ति को अनुकूल करने के लिए भरत महाराज ने मां का त्याग किया, जो नहीं लिखा गया है शास्त्र में। और आप सब लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि क्या क्या त्यागना चाहिए। उनमें से सबसे बड़ा त्याग है अपना अहंकार, और अहंकार को उठाने वाली ये तुच्छा शक्ति का त्याग। ये जब त्याग नहीं होगा तब तक हमारा अहम भाव, हमारा ईगो त्याग नहीं होगा। और ईगो का त्याग करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है इस संसार में, सबसे बड़ा मुश्किल अहंकार को त्यागना। अहंकार का त्याग चाहिए शॉर्ट में, बाकी तो सब कुछ क्या क्या त्यागा उनका वर्णन खूब है। और कोई क्वेश्चन? बाहर का मत कीजिए, इस्कॉन में जो देखा जाता है उनकी चर्चा नहीं हुई है, यहाँ साधक साधना की चर्चा हुई है। और कोई प्रश्न?
अन्य का अर्थ क्या है?
अन्य का अर्थ मतलब हमारे इस्कॉन की जो गुरु परंपरा में आए हुए जो ग्रंथ नहीं है।
इस्कॉन की परंपरा प्रभुपाद जी से चालू हुई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। बाहर के ग्रंथ माने प्रभुपाद जी के बाहर के ग्रंथ, सब बाहर के ग्रंथ नहीं है, वैष्णव परंपरा को बोली है। तो हमारे जो आचार्य जन के द्वारा लिखा हुआ है, रूप सनातन गोस्वामी पाद इत्यादि के द्वारा लिखा है, उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए कभी प्रभुपाद जी ने मना नहीं किया। हम लोग की लघुता ग्रंथी है ये, बहुत शॉर्ट माइंड है हमारा। हम लोग कहते हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा नहीं पढ़ना चाहिए, ये ठीक नहीं है। पाठ करना चाहिए, आचार्यों ने हमारे लिए लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे लिए भजन रहस्य इत्यादि लिखा है, तो क्यों नहीं भक्ति विनोद ठाकुर के पाठ किया? प्रभुपाद जी मना किया, भक्ति विनोद ठाकुर के कभी नहीं पढ़ो। बताइए, मुझे बताइए, जीव गोस्वामी पाद का बुक कभी न पढ़ो, सनातन गोस्वामी पाद का कभी न पढ़ो, चक्रवर्ती ठाकुर को कभी न पढ़ो, बताइए एक शब्द बताइए प्रभुपाद जी की किताब में बताइए। हाँ, इतर पुस्तक मत पढ़िए, जो उनके द्वारा नहीं लिखा है वो इतर पुस्तक है, या वेदव्यास महाराज के द्वारा लिखित अनंत साहित्य है, उन सब साहित्यों को पाठ करने का जरूरत नहीं। ये बात है, इतर से ये बात है। और कोई प्रश्न? अच्छा, माइक नहीं हमारा, ऐसे भी एक अपनी गलती से जोर से बोलने से चला गया है ना, तो गलती फील कर रहा हूं मेरा।
जीवन में अहंकार का त्याग करना सबसे बड़ी बात है।
हाँ जी,
पर वापस यहाँ पर कुछ दिन ऐसे होंगे कि सब लोग बोलना और सुनना बहुत आसान है।
हाँ, कर पाना
अहंकार किस प्रकार त्यागना, ये
हाँ इसका अर्थ ये है कि देखो, हम भक्ति भी करते हैं ना, अच्छा साधना भी करते, तो अहंकार होता है। हाँ, कठिनाई है, बहुत कठिनाई है भक्ति में। अच्छा साधक बनने का भी अहंकार होता है, लेकिन व्यक्ति को जानना चाहिए कि जो स्वास्थ्य ठीक है इसलिए अच्छे साधक में अहंकारा गिनती है। वो स्वास्थ्य ठीक रखा कृष्ण ने, कौन है अपना स्वास्थ्य बना करके रखा, कौन है, है कोई? जो कुछ भी है वो भगवान का कृपा, और मैं साधना करता हूं, कोई साधना करते हैं उनको ये समझना चाहिए के भगवत कृपा प्राप्ति के लिए है, अपनी साधना से कोई बचेगा नहीं 100%। और ये नियम इत्यादि वर्जन करने से भी कोई बचेगा नहीं, कलयुग इतना भारी है, तो कहीं ना कहीं हानि कर लेगा। सूक्ष्म अगर थोड़ा सा भी गैप दिया वहां से घुस करके बहुत बड़ा फाड़ करके निकल जाएगा, कलयुग है, बहुत बड़ा गैप करके दिखा देगा वो। इसलिए व्यक्ति को चाहिए अहंकार का अर्थ भगवान को प्रार्थना करना, खास करके नरसिंह देव को प्रार्थना करना कि मेरे सम्मान मान की जो भावना है ये प्रभु वो काट दीजिए। और आपके लिए क्या, जो हिरण्यकश्यपु के साथी जो पत्थर के समान देवी देवी ने कर दिया, तो हमारा अहंकार कौन बड़ी बात है उनके सामने। लेकिन उनसे भी बड़ा है, हिरण्यकश्यपु से भी बड़ा अहंकार हमारे पास है, प्रभु आप उनको काट दीजिए। स्तुति नीति करना, हमारे आचार्यों का लिखा हुआ कीर्तन का पाठ करना, ये उपाय है अहंकार को शिथिल करने का। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राय गौड़ हरि प्रमानंदे।